नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई, किसानों तथा सहकारी समितियों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि वे रोजगार सृजन, उत्पादन और देश के समग्र विकास के केंद्र में हैं। वित्त मंत्री आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का जवाब दे रही थी। इस विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, महत्वपूर्ण खनिज और परमाणु ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुधार की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कोविड के बाद लगभग 1024 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मौजूदा रेलगाड़ियों में 4651 नए कोच भी जोड़े गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने विश्वसनीय यात्रियों को निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के उपाय किए हैं।
जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को कन्फर्म टिकट मिलने लगा है।
सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा करने के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाना विपक्ष का भी कर्तव्य है।
ये प्रोटेस्ट है, ये तो इन लोगों का पॉलिटिक्स करना है, देश के हित में कोई सोचना नहीं है। दुनिया में सभी जगह तनाव है, इस बीच में भारत में एकदम शांति भी है। देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होगी और सभी को अपने विचार रखने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने तेल, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। अमेरिका ने ईरान को संघर्ष समाप्त करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के उद्देश्य से 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है। मीडिया की खबरों के अनुसार ये प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था। इसमें शत्रुता को रोकने, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने और उसकी क्षेत्रीय भूमिका को नया रूप देने के लिए व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। इस योजना में ईरान से अपने 3 मुख्य परमाणु संयंत्रों को बंद करने, यूरेनियम संवर्धन रोकने और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निलंबित करने का आह्वान किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के 26वें दिन भी पूरे क्षेत्र में हमलों का सिलसिला जारी है। राजनयिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अभियान तेज कर दिया है और सीमा पर दीर्घकालिक सुरक्षा योजनाओं के संकेत दिए हैं। अमेरिका ने 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 सैनिकों को त्वरित प्रतिक्रिया बल के रूप में पश्चिम एशिया में तैनात करने का आदेश दिया है। इस बीच ईरान ने मिसाइलों से और ड्रोन से हमले शुरू किए हैं, जिसमें तेल अवीव में कई स्थानों पर 6 लोग घायल हुए हैं। खाड़ी देशों में हवाई रक्षा प्रणालियां सक्रिय हैं। कुवैत और सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मिसाइल और ड्रोन को रोकने की सूचना दी है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया तनावों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का आर्थिक विकास 7.1% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।